फिर इसके बाद सवाल पैदा होता है कि इतने अच्छे अच्छे अखलाक हैं तो बंदा अपने अंदर ये लाता कब है? यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि मेरे अखलाक अच्छे हो जाएं, बगैर मेहनत के करने पड़ जाएं, चाहते हैं ना? अभी तीन बातें लिख लीजिए। नंबर एक, हक को पहचान लें तो अखलाक अच्छा हो जाएगा। जब आपको हक समझ आ जाता है ना तो उसको अपनाना मुश्किल नहीं है। दूसरा, नेकी की हकीकत को पहचान कर इसकी हिरस पैदा करने से। आप देखिए अच्छे अखलाक, अभी मैं चंद रिवायतें नोट कराऊंगी आपको। क़यामत के दिन नमाज रोज़ों से ज़्यादा अच्छा अखलाक जाएगा। कौन सा नमाज रोज़ा? नफली फ़र्ज नमाज रोज़े का कहीं तकाबुल नहीं है अखलाक से। तीसरी बात ये कि खैर से मोहब्बत करें और इसे तरजीह देना सीख लें और खैर और खूबी को अपना लें। जब ये तीनों काम आपकी तबीयत का हिस्सा बन जाएंगे ना तो आपसे अफ़ाले हसना अदा होंगे, फिर तकल्लुफ़ और मेहनत नहीं होगी। तो क्या पता चला? अच्छे अखलाक अपनाने के लिए आपको हक को पहचानना पड़ेगा नंबर वन, नेकी की हकीकत को पहचानना पड़ेगा और खैर से मोहब्बत करना पड़ेगा। अब है तो आगे, लेकिन अभी इधर ही लिख लेते हैं कि अखलाक सहीया क्या होता है, क्योंकि वो भी तो अभी समझ आ जाएगा तो बेहतर है। जो कुछ अभी कहा है ना उसका ऑपोजिट। बुरा अखलाक कौन सा? बुरे अकवाल और अफाल का बिला तकल्लुफ और बगैर मुशक्कत के आसानी से अदा हो जाना अख़लाक़े सैया कहलाता है। इसको अख़लाक़े मज़मूमा भी कहते हैं। मसलन झूठ, बदहती, खयानत, बेसब्री, बेहयाई, ज़्यादती करना किसी पे, सख्ती करना, जुल्म करना, और बाकी लिस्ट 2 दिन बाद मिलेगी आपको इंशाअल्लाह ताला। यकीन करें वल्लाही, अगर हमने ये 8-10 साल की उम्र में पढ़ा पढ़ाया होता तो आज उम्मत मुस्लिमा दुनिया की बेहतरीन उम्मत होती, यकीन कीजिए। फिर ये कैसे होता है? अब सवाल था कि अच्छे अखलाक कब होते हैं? जब हक की पहचान हो जाए, जब नेकी की असल आ जाए समझ। बुरे अखलाक कब आते हैं? कौन है जो बुरे काम करते हैं? नंबर एक, जब इंसान के अंदर के खैर और भलाई को भरा ना जाए। हर इंसान सोने की कान है, लेकिन सोने को कान से निकाल कर ढालना पड़ता है। डायमंड पहले कार्बन होता है, काले रंग का होता है जब निकलता है पहाड़ों से, फिर उसको कई मराहल से गुजार कर चमक दी जाती है ना। हर बंदे में खैर है, लेकिन उसको उभारा ना जाए तो बंदा बुरा बन जाता है। दूसरी बात, इंसान की मुहज़्ज़ब तरबियत ना की जाए। माँ बाप ने बिगाड़ दिया, पहली गाली पे लड्डू बांटा, आज बेटे ने गाली दी है, पर वही गाली जब माँ बाप को पड़ती है तो रोएंगे। तहजीब नहीं होती, तरबियत नहीं होती। तीसरी चीज़, तहजीब। कुछ लोग तहजीबन बद अखलाक होते हैं, गाली के बगैर बात ना करें तो कहते हैं मज़ा ही नहीं आया। मर्द है तो गाली ना दे, कई लोग हैं कहते हैं लड़का है तो गाली ना दे, ये क्या बात है, वो लड़का ही नहीं, उसकी मर्दानगी के ख़िलाफ़ है। तो तीन चीज़ों से बुरे अखलाक बनते हैं, अंदर की खैर ना उभारी जाए, बुरी तरबियत की जाए और गैर मुनासिब तहजीब में रखा जाए। फिर बंदे को बुरी आदतें अच्छी लगने लगती हैं, अच्छी आदतें बुरी लगती हैं और बुरी अच्छी लगती हैं और बुरे काम होते हैं। एक सवाल लिखिए, क्या इंसान का अखलाक बदला जा सकता है? क्वेश्चन, कल तक सहीया था, आज हसना हो सकता है? कल तक मजमूमा था, आज फादिला हो सकता है? सवाल पैदा होता है, आप बताएं मुझे सोच के, कितने लोग कहते हैं कि यस अखलाक चेंज हो सकता है, और कौन कहता है नहीं जी नहीं, ये जद्दी बुश्ती ऐसे हैं, ये नहीं बदलेंगे। देखिए लिखिए, आप सबके जवाब इकट्ठे हो जाएंगे। नंबर एक, अखलाक तब्दील हो सकता है, डेफिनेटली। अगर ये मुमकिन ना होता, अगर ये पॉसिबल ना होता, तो क्वेश्चन ये है कि फिर तालीम तरबियत, वाज, नसीहत और अंबिया और आज के मुबल्लिगीन, टीचर्स, प्रीचर्स, इनकी कोशिशों का क्या नतीजा निकलता? बात समझ गए? टीचर क्या कहता है, बच्चे की अच्छी तरबियत करे, तो बदलना ही नहीं, वो तो अंदर है जो आ गया, तो फिर तो ये सारी बेकार है। फिर दूसरी बात देखिए कि इंसानी माशरों में जो प्रॉफिट्स ने काम किया, उन्होंने तो असल में इंसानी जिंदगियों को तब्दील किया है ना। अल्लाह के नबी सल्लम ने क्या किया? अरब के बदुओं को इमाम बना दिया। कितनी बड़ी चेंज अल्लाह के नबी ने पैदा की हज़रत उमर फारूक के बीच में। कुफर के लिए तलवार निकलती थी, इस्लाम के लिए निकलने लग गई। उमर किसी जगह फिट ही नहीं होते थे, हर जगह उनको प्रॉब्लम्स होते थे, और बार बार अल्लाह के नबी उमर सबर, उमर अभी सबर, उमर सबर, तो उमर दब गए, तब्दीली की आपने, डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। फिर आप देखिए कि अल्लाह ने इंसान के अंदर बदलने और असर कबूल करने की सलाहियत रखी है, तो आप कह सकते हैं कि अखलाक भी तब्दील होता है, मुनज़्ज़म और उसको मुस्तहकम किया जाता है। करें कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन, अखलाक तब्दील कैसे होते हैं? नंबर एक, किसी शख्सियत को रोल मॉडल बना लें। तब्दीली के लिए एक प्रैक्टिकल एक पर्सनैलिटी लाजमी होती है, यानी आप कहें कि ये तब्दीली थियोरेटिकल नहीं आती, और ये फ़र्क हम देखते हैं ऑनलाइन और ऑन साइड स्टूडेंट्स में मोस्ट लाइकली, जो सिर्फ इल्मी फ़ायदे ले रहे होते हैं ना, लेकिन उनके साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप लीडर्स होते हैं, वन ऑन वन बेस पे उनका इंटरेक्शन होता है, कम तब्दीली आती है सम टाइम, हर जगह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो ऑन साइट पे बैठकर टीचर्स और हेल्पर्स की मदद से सीखते हैं और उनको एक ख़ास प्रोसेस से गुजरते हैं, चलते बैठते उठते देखते हैं, उनमें तब्दीली ज़्यादा आती है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या है, किसी को आइडियलाइज़ करें। क्वेश्चन क्या है कि मैं किसको करूँ, तो सूरत अहज़ाब 21 ने आपको मुझे एक आइडियल दे दिया, लकत का न लकुम फ़ी रसूलिल्लाही उसवतुन हसना, नबी सल्लम को रोल मॉडल बना लो। और वो कैसे बनता है? शिमाइल तिरमिज़ी पढ़ लें, शिमाइले नबी क्या है? आदतें, उठना बैठना चलना फिर, ये सारी चीज़ें आपके ऐड होंगी अगले कोर्स में। जो कीमत दे दें वो थोड़ी है, जो वक्त लगा दें वो, जो कुर्बानी दे दें वो थोड़ा है, बिलीव मी आप अपने आप को डिस्कवर करने वाले हैं। कुरान ने भी आपको दिया है, सबीलुल जन्ना अंदर डालता है और नूरुल नूर बाहर लाता है, तो इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे अल्लाह ने आपके नसीब में अगर किया तो। नंबर दो, दूसरी वजह, इंसान को जो तब्दील करती है चीज़ वो इल्म है। इल्म, देखिए अख़लाक का ताल्लुक ईमान से है ना, और दीन को पूरी तरह समझने के लिए इल्म ज़रूरी है, तो कुरान और हदीस का इल्म बंदे के अंदर तब्दीली लाता है। और तीसरी इसकी सूरत है तरबियत, तरबियती निज़ाम के अंदर रहने से तब्दीली आती है। आप तरबियत के मराहल के लिए ख़ुद को पेश कर दें, जिसको कहते हैं ना कि डंडा हाथ में दे के कह दो जो करना है कर लो, बोनलेस मीट बनेंगे, हर रूल रेगुलेशन को अपने ऊपर लें। आप देखिए मीट है ना, गोश्त है, आप उस पर सिरका डालते हैं, फिर आप उसको फोक से मैरिनेट करते हैं, चुभता नहीं होगा गोश्त को, नमक डालते हैं, फिर आप उसके अंदर दही में मिर्चें मसाले डाल के उस गोश्त को करते हैं ना, जब वो गोश्त आपके सामने आता है तो जो उसका टेस्ट है, और अगर आप एक बोटी कैसी ऊपर ऊपर थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के पका के रखें, फ़र्क है। ये ओवरनाइट क्यों करते हैं? जो स्टूडेंट्स अपने आप को बोनलेस मीट बनाकर सामने रख देते हैं ना कि जो करना है हमारे साथ कर लो, वो टेस्टी होते हैं, उनका टेस्ट फिर दुनिया भी लेती है। और जो अकड़े सकड़े अंदर, एक कतरा नहीं लेना, ऊपर ऊपर कोटिंग है, वो पहले ही छिलका, आप देखें कि चिकन आप पकाएं और ऊपर बड़ी मज़े की कोटिंग को, कोटिंग खा लें अंदर चिकन फीका है ना, तो अखलाक के आपके अंदर जाके कचोके लगाएंगे, लगेंगे तो फिर है, और अगर कहते हैं नहीं तो ना से, हु केयर, बात समझ गए, इट्स ऑल अबाउट यू एंड मी, मुझे बनना क्या है। आपको पता है कि हमारे असलाफ ऐसे उस्तादों के पीछे फिरते थे, कहते थे हमें खड़ा करो, हमारे अंदर के खोट बाहर निकालो, हम तुम्हें इजाज़त देते हैं। माएँ बच्चों को, छोटे बच्चों को ले लेके फिरती थी और दुआ देती थी, मुझे इस वक्त याद नहीं है इमाम बुखारी या किन की माँ थी, जब बच्चे सताते हैं ना, आपको पता हर बच्चे सताता है, माएँ कहती थी अल्लाह तुझे किसी मुहद्दिस के हाथ लगवा दे। आपको पता है मुहद्दिस क्या करते हैं? जिरा व तादील, क्यों किया कैसे किया, जिरा मीन जिरा, बस जैसे जिरा हम करते हैं बड़ी, और तादील अदल से, यानी मुहद्दसीन ने अल्लाह के नबी की जो हदीसें कुलक की है ना, हर बंदे पे जिरा और तादील की है। ठीक है, गलत तो नहीं, झूठा तो नहीं, शराबी तो नहीं, नशा तो नहीं, बीमार तो नहीं, ये हदीस कब पेश की, उससे पहले बीमार हुआ उसके बाद हुआ, ये जब आप उलूमुल हदीस पढ़ेंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी। आज भी दुनिया इस पे मुत्तफिक है कि दुनिया में जिस हस्ती के बोले हुए लफ्ज़ों पे सबसे ज़्यादा वक़ हुआ है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नामुमकिन को मुमकिन बनाया मुहद्दिसीन ने। अभी तो हमने हदीस का भी कोना भी नहीं लिया, लेकिन आप लेंगे इंशाल्लाह। क्या समझ आई आपको कि आपके ऊपर किसी को मुसल्लत कर दिया जाए कि हर बात पे टोको, है जरूरत? आप अभी नाराज़ हो जाएंगे, खुदा हाफिज़। हाजा फिराकु बैनी व बैनकुम, आज के बाद ख़त्म। नहीं जी, मुझे कह दिया, अच्छे भली बात कर रहे थे, ये टोक दिया। हम तो अपने बुत लेकर इतने फिर रहे हैं, जरा सी बात को, वो कहते हैं ना, पाँव पे पाँव आ जाए किसी के तो हम नाराज़ हो जाते हैं। हम तो इतना नाराज़ होते हैं, आप यकीन करें कि अपने आप को पेश कर दें, आप सभी अपने आप को पेश कर दें कि हमारे ऊपर जुमले बोले हैं। है जरूरत? अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, हार्ट फेल हो जाए, ज़रा भी नहीं सुन। लेकिन ये सुनने का हौसला आ जाए तो एक छोटे से हॉल में कल वहुस्सिल मा फिस सुदूर, सामने मैदान हशर में अंदर के पोल खुल रहे होंगे, एक एक बार जो मैं जिन तो हदीस अखबार रहा। तो ये दुनिया में करना बेहतर है, वहाँ खुलेगा तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए अब अगले और अहम सवाल पे जाते हैं कि क्यों अखलाक हसना अख्तियार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखलाक हसना अख्तियार करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इतनी मेहनत करे कौन, अपने ऊपर इतने कचोके लगवाए, तो उसका जवाब क्या है? नंबर एक, अच्छे अखलाक क़यामत के दिन नामे आमाल को भारी करेंगे। हदीस का हवाला लिख लीजिए, पूरी पूरी हदीसें भी मौजूद हैं और आपको मिल भी सकती हैं, तिर्मिज़ी 2002। मोमिन के तराजू में क़यामत के दिन हसनात में हुस्ने खुल्क से ज़्यादा भारी कोई चीज़ ना होगी। हाई वेट है इसका। दूसरी रिवायत तिर्मिज़ी 1162। ईमानदारों में ईमान के लिहाज से कामिल वो हैं जो अखलाक के लिहाज से अच्छे हैं। तीसरी रिवायत 2018 तिर्मिज़ी। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल को सबसे ज़्यादा प्यारे और आपसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जिनके अखलाक अच्छे हैं। आज दुनिया में भी आप और मैं यही चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि अच्छे लोगों में रहें। बिलीव मी, मैं अक्सर एक जुमला बोलती हूँ, दुनिया में अच्छे लोगों का साथ मिल जाना दुनिया की जन्नत है। अच्छे अखलाक वाला शौहर मिल जाए आपकी जन्नत है, कमाए खिलाए वो बाद की बातें हैं, अखलाक तो अच्छा है ना। और अच्छी बीवी मिल गई, कुछ भी ना करे लेकिन उसका अखलाक आपके घर को जन्नत बनाएगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि नबी सल्लम ने हुस्ने खुल्क के लिए दुआएं भी की हैं। और याद रखिए कि अखलाक के हसना नफ्स इंसानी का कमाल है, ये जुमला ना भूलिएगा, अखलाक के हसना नफ्स इंसानी का कमाल है, पीक प्राइम लोकेशन ऑफ इंसान का नफ्स। और इसी से फिर मुसलमान हुसन और खूबसूरती हासिल करता है। और जितना ज़्यादा इसके ऊपर आप गौर करेंगे, आपका दिल करेगा कि अच्छा हो। फिर एक और पॉइंट नोट करें, नबी सल्लम की बेसत इंसानियत पर अल्लाह का इनाम है, एहसान है। लक़द मन्नल्लाहुल्मोमिनीन इस बात सफ़ीहिम रसूल मिनहुम, सूरत आले इमरान में आप पढ़ के आए हैं। लेकिन नबी सल्लम की आमद का मकसद क्या था? दो बातें, नंबर एक, लोगों को अल्लाह की इबादत सिखाना, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, सूरह ज़ारियात। और दूसरा मकसद आपके दुनिया में आने का, आपको मुझे अखलाक सिखाना था। दलील नोट कर लीजिए, हदीस के अल्फाज क्या हैं? बोइस तो आपने फरमाया, मैं मबूस किया गया ली उतम्मीमा, ताकि मैं पूरा करवा दूँ हसनल अखलाक, हुस्ने अखलाक। ये मौता इमाम मालिक की किताब है, किताब हुस्नुल खुल्क नंबर 8। तो अल्लाह के नबी की आमद का मकसद क्या है? उम्दा अखलाक की तरबियत। और आप ख़ुद भी ऐसे थे। कुरान में सूरत कलम आयत 4, आपके अखलाक की गवाही अल्लाह ने दी, वइन्नक लअला खुलुकिन अजीम। और आप दूसरों को हमेशा अच्छे अखलाक की तलकीन करते थे। आपके अंदाज़े तरबियत के बारे में हज़रत अनस 10 साल जो आपके साथ रहे, क्या कहते हैं? राईतुहू, मैं उनको देखता हूँ, या मुरु बि मकारिमिल अखलाक, के आप लोगों को उम्दा अखलाक की तालीम देते हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 6362। घर का मुलाजिम खादिम ये गवाही दे दे, इससे बड़ी गवाही और क्या होगी? अपने ऊपर भी लेकर सोचें, जब से इस स्कूल में आना शुरू किया है, कोई एक नेगेटिव चीज़ आपको सिखाई है? मैं किसी जगह, हम थे एक क्लोज सर्कल, छोटी सी हमारी गैदरिंग थी, स्टूडेंट्स भी थे, उनके फैमिलीज थी, तो बातें चल रही थी। तो एक हस्बैंड अपनी बीवी, जो कि आप ही में से किसी के होंगे इधर आने वालों में, उनकी बात करके बड़े खुश हो रहे थे कि इनको ये है वो है, लेकिन जैसे वो एक जोक में कह रहे कि लेकिन कभी कभी ये मुझे वक्त नहीं देती। तो जो दूसरी सिस्टर के हस्बैंड थे वो कहेंगे लेकिन यहाँ इनको ये सिखाया नहीं जाता, यानी वो खुद भी सुनते होंगे या उनको पता है। उन्होंने कहा ये मैं कह सकता हूँ कि नूरुल कुरान वाले ये नहीं सिखाते कि शौहरों को वक्त ना दो या उनकी इज्जत ना करो। और मैं चुपके से सुन के शुक्र कर रही थी कि कोई अगर फतवा दे रहा है तो कोई उसका जवाब भी तो दे रहा है। आप खुद गवाह हैं, आपने 2-3 साल से इधर पढ़ा, कोई एक बुरा अख्लाक आपको इस जगह में सिखाया गया? कोई एक किसी के बारे में? तो फिर ये ठीक जगह है। अच्छा अख्लाक हर जगह से नहीं मिलता, बिलीव मी। तो बहरहाल हज़रत अनस की रिवायत तो नबी के लिए थी, तो लिहाजा इस मौजू पे बात करना और सुनना हम सब के लिए बहुत लाजमी है। चंद आयतें नोट कीजिएगा हुस्न अख्लाक के मौजू पे। एक तो बता दी सूरत कलम 4, अल्लाह ने नबी के अख्लाक की गवाही दी। दूसरी सूरत आल इमरान 159, फ़बिमा रहमत मिन अल्लाह लिन्त लहुम। ये अल्लाह की रहमत है कि आप इनके हक में बड़े नरम हैं। कौन? नबी सल्लम। वलव कुन तफज्जन गलीज अल कल्बी। और अगर आप सख्त दिल होते, गंदी जुबान वाले होते। फज क्या होता है? अंतड़ियों में बहने वाला गंदा पानी, ओजड़ी का पानी। गलीज अल कल्ब, संग दिल, सख्त दिल। लन फद्दु मिन हौलिक, तो आप गिर्द गिर से ये छट चुके होते। यानी नबी की पर्सनैलिटी बताई जा रही है कि आपकी ये कशिश है कि आप गिर्द गिर्द जमा हुए में अगर आप सख्त दिल गंदी जुबान के लोग होते तो आपके इर्द गिर्द इतनी रौनक ना होती। फिर अगली रिवायत बुखारी की लिखिए 273, इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिमा सालिखल अखलाक। ऊपर जो तिरमिजी का लिखा था ना उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क था, यहाँ सालिहा है, उधर फ़र्क और था कि मैं तो भेजा ही गया हूँ अच्छे अखलाक की तकमील के लिए। और अगली रिवायत नोट कीजिएगा मुस्लिम 6017, कान रसूलुल्लाही थे रसूलुल्लाह अहसन नासी खुलका, लोगों में सबसे अच्छे अखलाक के हामिल। और अबू दाऊद की रिवायत लिखिए 4682, अबू हुरैरा से, अकमलुल मोमिनीन ईमानन अहसनहुम खुलका, मोमिनों में सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाले वो हैं जो अखलाक में सबसे अच्छे होंगे। और अगली रिवायत सुन के तो ज़रूर ही दिल चाहेगा आला अखलाक पढ़ने सुनने और उनको अपनाने का। और वो क्या है? तिरमिज़ी 2003, किताब अल बिर वसिला, अबू दरदा रावी हैं। आपने फरमाया मा मिन शै यूदौ फिल मीज़ानी अस्कलु मिन हुस्निल खुलुक, मेज़ान में हुस्ने अखलाक से ज़्यादा भारी कोई चीज़ ना रखी जाएगी, यानी आपकी नेकियों को भारी करने वाली नेकी। वइन्न साहिबा हुस्निल खुलुकी लयबलुगु बिही दरजता साहिबे सौमी वसला, क्योंकि अच्छे अखलाक वाला शख्स रोज़ेदार और नमाज पढ़ने वाले का दर्जा पा लेता है। देखिए एक तो रातों की बातें और दिन के रोज़े नफिल में, और दूसरी तरफ अच्छा अखलाक। तो फिर ज़रूरत है ना कि अच्छे अखलाक को सही तरह से समझें। और अगली रिवायत भी नोट कीजिए, तिरमिज़ी 2684, खसलतानी ला तजतमेआनी फी मुनाफिक, दो खसलतें ऐसी हैं जो मुनाफिक में जमा नहीं हो सकती। कौन सी? हुस्नु समतिन वला फिक्हु फिद्दीन। मुझे इस हदीस से डर भी बड़ा लगता है कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो जाऊंगी। कौन सी दो खसलतें? नंबर एक, अच्छा चाल चलन, करैक्टर अच्छा नहीं होता मुनाफिक का। और दीन की समझ, तफक्कु फिद्दीन नहीं लेता, यह अबू हुरैरा की रिवायत है। तो अल्लाह ना करे हम में से कोई मुनाफिक हो, दिल नहीं लगता मुनाफिक का दीन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर तब्दीलियाँ करना लाजमी होता है अपने अंदर। फिर अगली रिवायत है तिरमिज़ी 1987, अबी ज़र से, इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, अल्लाह से डरते रहो जहाँ भी तुम हो। व अत्बे सैयतल हसनता, और बुराई के पीछे नेकी करो, कभी बुराई हो जाए ना फ़ौरन नेकी कर दो। क्यों? तमहुहा, क्योंकि नेकी बुराई को मिटा देगी। वखा लेकिन ना सब खुलुकी हसन, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ। तो गोया के फिर अच्छा अखलाक आपके मेरे लिए लाजिम है। दुआ कीजिए अपने लिए दिल की गहराई से कि अल्लाह आपको मुझे बाखलाक कर दे, और हमारा अखलाक वो अखलाक हो कि जो हकीकत में मतलूब है। बाजारी ट्रेडिशनल सकाफती रिवायती अखलाक ना हो, और अखलाक के नाम पे बेपर्द ना हो जाएं, अखलाक के नाम पे गुनाहगार ना हो जाएं, और अखलाक के नाम पे हम अल्लाह की हदों को तोड़ने वाले ना बन जाएं। बिलीव मी, मैं दिल से बोल रही हूँ कि आज हमारे यहाँ अखलाक का कॉन्सेप्ट इतना मिसकॉन्सेप्ट उसका पेश किया गया कि लोग हर हद को तोड़ कर कहते हैं फुलां भाई बड़े बाखलाक हैं, घंटों बात करते हैं मुझसे और अकेले में बात करते हैं, और वो है, और भाभी तो इतनी अच्छी हैं कि भाई घर हो ना हो तो वो फिर भी हमें चाय बड़ी मज़े की पिलाती हैं। मैं सिर्फ मिसाल दे रही हूँ, चाय पिलाना कोई बुरी बात नहीं है, इसको कोई नेगेटिव ना ले, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ की हदें भी उसी मालिक ने दी हैं। तो इंशाल्लाह हम अखलाक में जो मेरी नज़र में सबसे अहम था उसको तरतीब ले रही हूँ, हालांकि किताबों में आपको बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी, बट मुझे लगता है जो रूट है, जिसको आप कह लीजिए कि आपके मेरे लिए बुनियाद का दर्जा बनती है, वो सब्र है।
आज़ा जो सबीरुल जन्ना में सीखा है वो तो हमारी वो में भी
गुड,
है।
शाबाश, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो अभी तक है वो अंदर है, उससे किसी को क्या लगे, किसको पता आपको कितना तर्जुमा याद है, कितनी ग्रामर याद है, कितनी हदीस याद है, लेकिन आप बिहेव क्या करते हैं ये लोगों को पता चलेगा।